नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 12 अप्रैल 2024 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, गाजा पट्टी में लड़ाई से हो रही भीषण बर्बादी के बीच गुजर बसर के लिए आम फलस्तीनियों का संघर्ष, जरूरतमंदों के लिए सहायता मार्ग में रुकावटों का सिलसिला जारी, म्यांमार में हिंसक टकराव और असुरक्षा के बीच बढ़ती निर्धनता और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लोग, सूडान में युद्ध की वजह से जबरन विस्थापन का शिकार लोगों के लिए बढ़ती मुश्किलें, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन विवाह और धर्मांतरण मामलों पर गहरा क्षोभ, और हेपेटाइटिस की बीमारी से हर दिन हजारों लोगों की हो रही है मौत। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए UN News। अब समाचार विस्तार से। काबिज फलस्तीनी इलाके के लिए UN की मानवीय सहायता टीम ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में लड़ाई के बीच आम लोग गुजर बसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। UN टीम ने इस सप्ताह खान यूनिस इलाके में हालात का जायजा लिया, जहां से हाल ही में इजरायली सैन्य बलों की वापसी हुई है। इस इलाके में लड़ाई की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और सड़कें पूरी तरह से धूल गुबार से बने रास्तों में तब्दील हो गई हैं। UN एजेंसी का कहना है कि मानवीय सहायता कर्मी स्थानीय आबादी तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें सुरक्षा, सहायता मार्ग की उपलब्धता और इजरायली सैन्य बलों के समर्थन की जरूरत है। काबिज फलस्तीनी इलाके में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रिचर्ड पेपरकॉर्न ने खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुई क्षति को बयां किया।
It is an eerie silence. No one and nothing is there. Most of the equipment and machinery are damaged. It's a complete mess.
डॉक्टर पीपरकॉर्न कह रहे थे कि इस अस्पताल में डरा देने वाला सन्नाटा पसरा है। यहां आप कुछ भी नहीं है। अधिकांश मशीनें उपकरण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और कामकाज ठप है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को भी 2 सप्ताह तक चले इजरायली सैन्य अभियान में भारी क्षति पहुंची है। UN एजेंसी के अनुसार अस्पताल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य सामग्री बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। खान यूनिस की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना फटे हुए विस्फोटक आयुध सामग्री बिखरी हुई है, जिससे आम नागरिकों विशेष रूप से बच्चों के लिए जोखिम है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी संगठन ने क्षोभ जताया है कि सीमा चौकियों पर लंबी देरी और गाजा में पसरी असुरक्षा के कारण मानवीय राहत जरूरतमंदों तक पहुँचाने में रुकावटों से जूझना पड़ रहा है। गाजा के उत्तरी इलाके में अकाल की आशंका है, जहां आबादी का 70% हिस्सा भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है और सहायता मार्ग में अवरोध बरकरार हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने दोहराया है कि गाजा में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का सर्वोत्तम उपाय युद्ध विराम को लागू किया जाना है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हिंसक टकराव और असुरक्षा के बीच आम लोग बढ़ती निर्धनता, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मध्य वर्ग का आकार पिछले 3 वर्षों में 50% तक सिकुड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट में ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
पावर्टी एंड द हाउसहोल्ड इकोनॉमी ऑफ म्यांमार अ डिसअपियरिंग मिडिल क्लास शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उपजी चुनौतियों और उनके गहरे प्रभावों को रेखांकित किया गया है। देश में आर्थिक झटकों को सहने और तेजी से अर्थव्यवस्था को उबारने में मध्य वर्ग की भूमिका को अहम माना जाता है, मगर यहाँ इसका आकार तेजी से घट रहा है और लोग फिर से निर्धनता के गर्त में धंस रहे हैं। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि निर्धनता में आए उछाल से नकदी हस्तांतरण और अन्य जरियों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष $4 अरब की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के लिए म्यांमार में 12,000 से अधिक घर परिवारों की जानकारी जुटाई गई। बताया गया है कि अधिकांश परिवारों को अपने जीवन यापन के लिए मजबूरी में कदम उठाने पड़े हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती, जमा पूंजी का इस्तेमाल, उधार लेना और कम मात्रा में भोजन करने समेत अन्य उपाय हैं। देश में आंतरिक क्षेत्रीय विसंगतियों से भी मौजूदा संकट और गहन हो रहा है। हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाकों में निर्धनता में उछाल आया है, जिसकी वजह घरों में हुई तबाही, खेतों तक जाने पर सख्ती, घरेलू विस्थापितों की संख्या में वृद्धि है। इससे अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर शहरी व ग्रामीण इलाकों में विभिन्न समुदायों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के इरादे से तत्काल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पुकार लगाई गई है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन का कहना है कि सूडान में पिछले वर्ष अप्रैल महीने में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच हुए टकराव के बाद से अब तक 85 लाख सूडानी नागरिक अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। इनमें से 18 लाख लोगों ने सीमा पार करके दक्षिण सूडान, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया और युगांडा में शरण ली है। हजारों लोगों का तांता अब भी लगा हुआ है। सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच लड़ाई की वजह से लोगों की जिंदगियों पर असर हुआ है और वे बेहद डर में दिन गुजार रहे हैं। अब तक इस टकराव में कम 13,000 लोगों की जान गई है, हजारों अन्य घायल हुए हैं। आम नागरिकों पर हमले और यौन व लिंग आधारित हिंसा के मामले बेरोक टोक जारी हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई गई है, जिनके पास कुछ नहीं बचा है और जिन्हें तुरंत भोजन, जल, आश्रय और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। एक साल से जारी गृह युद्ध के कारण खाद्य उत्पादन प्रभावित हुआ है और स्थानीय समुदायों को जल और ईंधन जैसे अन्य आवश्यक संसाधनों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हिंसक संघर्ष से प्रभावित इलाकों में 50 लाख लोग अकाल के कगार पर बताए गए हैं। यूएन स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि तत्काल जीवन रक्षक कार्यों के लिए धनराशि मुहैया नहीं कराई गई तो आने वाले महीनों में भूख के कारण लगभग 2.25 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों और लड़कियों के जबरन धर्मांतरण, अपहरण, जबरन विवाह और यौन हिंसा का शिकार बनाए जाने की घटनाओं पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से ऐसी घटनाओं के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। साथ ही कम उम्र में बच्चों की जबरन शादी, उनके अपहरण और अल्पसंख्यक लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए कानूनी उपायों पर बल दिया गया है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
विशेष रिपोर्टर के समूह ने अपना एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों के लिए मौजूदा हालात और सुरक्षा के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईसाई और हिंदू धर्म की लड़कियों पर अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किए जाने, उन्हें तस्करी व यौन हिंसा का शिकार बनाए जाने, उनका बाल विवाह होने और घरेलू गुलामी का शिकार बनाए जाने का जोखिम अधिक है। यूएन विशेषज्ञों ने जबरन धर्मांतरण के मामलों का भी उल्लेख किया, जिसमें मिसाल रश्दी नाम की एक युवती भी है। वर्ष 2022 में मिसाल जब अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उन्हें बंदूक की नोक पर घर से अगवा कर लिया गया। इसके बाद उन पर यौन हमला हुआ, इस्लाम धर्म कबूलने पर मजबूर किया गया और अगवा करने वाले व्यक्ति के साथ ही जबरन विवाह करा दिया गया। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि बाल, जल्द और जबरन विवाह को किसी भी प्रकार से धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ध्यान दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम होने की स्थिति में उसकी सहमति के कोई मायने नहीं है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 18 के संबंध में अपने तयशुदा दायित्वों का निर्वहन करने का आग्रह किया है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर पाबंदी लगाई जानी होगी। इसके अलावा युवतियों समेत सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष किया जाना होगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन 3,500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बीमारी विश्व में संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों का दूसरा बड़ा कारण है, जिससे हर वर्ष 13 लाख लोगों की मौत होती है। रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल हर दिन 6,000 लोग वायरल हेपेटाइटिस से संक्रमित हो रहे हैं। यूएन स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने कहा कि ये रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। हेपेटाइटिस संक्रमण रोकने में विश्व स्तर पर प्रगति हुई है, इसके बावजूद मौतों की संख्या बढ़ रही है। रोग के निदान और उपचार के लिए बेहतर उपकरण भी उपलब्ध हैं, उनकी कीमतें भी घट रही हैं, लेकिन परीक्षण और उपचार के दायरे में वृद्धि नहीं हो पा रही है। बहुत कम संख्या में ही हेपेटाइटिस पीड़ितों की बीमारी का निदान या इलाज हो पा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।